जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेके आए थे कहाँ से? गोलोक धाम से। क्यों? प्रचुर करुणा के कारण। हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर श्यामानंद ठाकुर। वैसे श्यामानंद ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। और जो पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ मोरा भट्ट जुग, दोनों भट्ट कहाँ गए? कौन से दोनों भट्ट? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। और कहाँ कविराज? कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। एक काले यानी अचानक कहाँ चले गए? गोरा नटराज, जो गौर वर्ण के थे, नर्तकों के राजा थे, नटराज चैतन्य महाप्रभु। पाषाणे कुटे वो माथा अनले पसीबो। मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूंगा, अनले पसीबो अग्नि में प्रवेश करूंगा। गोरांगा गुणेर निधि कोथा गेले पावो। तो गुणों के जो समुद्र हैं गौरांग महाप्रभु, किस प्रकार से मैं उनको प्राप्त करूं? शेषव संगी रसंगे जे कैलो विलास। जितने संगी थे उन्होंने गौरांग महाप्रभु के संग में विलास किया। से संग ना पहिया कांदे नरोत्तम दास। उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रोते हैं, क्रंदन करते हैं। तो आज श्यामानंद प्रभु का दुर्भाव दिवस है। तो श्यामानंद प्रभु के विषय में सबसे पहले तो गौड़ी वैष्णव चरितामृत, इसमें से मैं कुछ पढ़ूंगा और उसके बाद फिर कुछ अन्यत्र से आपको कुछ घटना सुनाऊंगा। उनके जन्म के पूर्व अनेक संतानों को खो बैठने के परिणाम स्वरूप दुखी हो जाने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। नहीं, दुखी कृष्णदास नहीं है, दुखी रखा था। हाँ, इसमें कुछ त्रुटि है। माता पिता ने दुखी नाम रखा था। हाँ, इनका जो जन्म हुआ था जिन माता पिता से, उन्होंने इस बालक का नाम दुखी रखा था। अभी श्यामानंद पंडित या श्यामानंद प्रभु नाम कैसे आया वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन बालक का नाम माता पिता ने क्या रखा था? दुखी। क्यों? क्योंकि इनके पहले बहुत सी संतानें पैदा होकर के मर गई थी। हैं, तो बच्चे का नाम एक खराब नाम रखते हैं, बच्चे की रक्षा के लिए माता पिता कुछ खराब नाम रखते हैं, तो दुखी नाम रखा माता पिता ने। हृदय चैतन्य से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत ये कृष्णदास कहलाए। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के अधीन गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य का संग किया। तो तीन लोगों का एक बैच था। जीव गोस्वामी ने एक साथ जो शिक्षा दी थी गोस्वामी ग्रंथों की, तो तीन लोगों का एक बैच था, है ना। कौन कौन थे? श्यामानंद प्रभु, इनका नाम तो अभी श्यामानंद नहीं पढ़ा है ना, जो भी हो इन एक तो ये हैं, और दूसरे नरोत्तम दास ठाकुर और तीसरे श्रीनिवासाचार्य, है ना। तो फिर नूपुर की कथा। वृंदावन में वास करते समय कृष्णदास, कृष्णदास नाम है इनका, प्रतिदिन भोर होने से पूर्व वहाँ की गलियों को गुहारते थे। क्यों? कि वैष्णव लोग मंदिरों में आएंगे दर्शन के लिए तो उनके पांवों में कंकड़ और कांटे ना लगें। तो वैष्णव सेवा है, सवेरे सवेरे मंदिर को झाड़ना बुहारना वैष्णव सेवा। कि वैष्णव लोग आएंगे उनके पैर गंदे होंगे, कांटे लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, है ना। तो ये जो है झाड़ते बुहारते थे। एक दिन प्रातःकाल उन्हें एक मनमोहक सुंदर स्वर्ण नूपुर मिला, सोने का नूपुर मिला। जब ललिता और विशाखा सखियों ने कृष्णदास से ये नूपुर मांगा, क्योंकि नूपुर किसका था? राधा रानी का था ना नूपुर, है ना। तो ललिता विशाखा ने जब नूपुर मांगा, इन्होंने कहा केवल उसकी स्वामिनी को ही मैं दूंगा, ये नूपुर जिसका है उसी देवी को मैं नूपुर दूंगा। वे गोपियां कृष्णदास की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें श्रीमती राधिका के समक्ष ले गई ललिता विशाखा। राधा रानी ने उन्हें अपने पाँव में वो नूपुर पहनाने की अनुमति प्रदान कर दी, किंतु वो नूपुर पहनाने के पूर्व कृष्णदास ने सम्मान पूर्वक उसे अपने मस्तक से लगाया। ऐसा करने से इनके ललाट पर नवीन तिलक चिन्ह अंकित हो गया, जो आज भी उनके अनुयायियों के माथे की शोभा बढ़ाता है। यानी श्यामानंद संप्रदाय एक अलग ही संप्रदाय हो गया है, जिसमें जिस संप्रदाय कि लोग नूपुर का तिलक, नूपुर के चिन्ह का तिलक लगाते हैं। हम लोग जो तिलक लगाते हैं ये ऊर्ध्व कुंड तिलक है, लेकिन वो नूपुर के चिन्ह का तिलक लगाते हैं। कृष्णदास के दिव्य सौभाग्य से प्रमुदित होकर श्री जीव गोस्वामी ने इन्हें श्यामानंद नाम प्रदान किया, जिसका अर्थ है वो जो श्रीमती श्यामा को आनंदित करे। श्यामा आनंद, श्यामानंद, श्यामा कौन है? राधा रानी, अथवा श्याम सुंदर कृष्ण को आनंद प्रदान करे। श्याम आनंद भी, इसका संधि विच्छेद होता है, और श्यामा आनंद भी, श्यामानंद दोनों प्रकार से बनता है। श्याम आनंद यानी श्याम को आनंद प्रदान करें, और श्यामा आनंद, श्यामा यानी राधा रानी को आनंद प्रदान करें, दोनों प्रकार से। हृदय चैतन्य की तेरह भाव के कुछ समय बाद उन्होंने श्यामानंद को स्वप्न में दर्शन दिया। हृदय चैतन्य इनके गुरु हैं। किसके गुरु हैं? श्यामानंद पंडित के गुरु हैं। तो जब उन्होंने तेरह भाव हो गया तो उन्होंने श्यामानंद को स्वप्न दिया, क्या आदेश दिया स्वप्न में? प्रचार कार्य करने के लिए। अपने प्रधान शिष्य रसिकानंद की सहायता से श्यामानंद ने गौर नित्यानंद की सेवा अर्चना का उड़ीसा में सर्वत्र प्रचुर प्रचार किया। इनके मुख्य शिष्य कौन है? रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु के शिष्य। तो उनकी सहायता से गौर नित्यानंद की सेवा अर्चना, गौर निताई की अर्चा विग्रह, अभी तो कितने मिलते हैं गौर निताई की अर्चा विग्रह, तो जगह जगह मिलते हैं प्रभुपाद की कृपा से। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? श्यामानंद प्रभु की कृपा से, श्यामानंद प्रभु और उनके शिष्य रसिकानंद प्रभु की कृपा से गौरनिताई के अर्चा विग्रह बनने शुरू हुए और पूजा करना, पूजा होना शुरू हुई। वृंदावन के राधा श्याम सुंदर एवं राधा दामोदर के मध्य स्थित मार्ग पर दूसरी ओर श्यामानंद की पुष्प समाधि विराजमान है, जिसमें दिन रात कीर्तन होता रहता है। तो इसमें से जो है मैंने पढ़ के सुनाया, अब जो नूपुर की घटना है इसका बहुत विस्तृत वर्णन है एक अन्य किताब में, और इनके जीवन की और भी बहुत सी लीलाएँ हैं, तो इतना तो समय ही नहीं है हमारे पास। तो नूपुर की घटना का जो विवरण है आप लोग सुनिए, अब मैं कितना सुना पाऊँगा श्यामानंद प्रभु की कृपा से, जो है मैं कोशिश करूँगा इस घटना का रसास्वादन कराने का प्रयास करूँगा, आप लोगों को इसका रस आस्वादन प्राप्त हो। तो हमने अभी सुना कि हृदय चैतन्य से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी, है ना, और ये हृदय चैतन्य रहते थे अंबिका कालना में। हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित के शिष्य थे, हैं, गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, जो सुबल सखा के अवतार हैं, है ना। तो इन्होंने हृदय चैतन्य से दीक्षा प्राप्त की, है ना, अंबिका कालना बंगाल में ही है, और फिर उनकी आज्ञा से ये वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन में जीव गोस्वामी से अब ये ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, और इनके साथ में तीन मतलब दो भक्त और भी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, है ना। अब ये जीव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे साक्षात सेवा प्रदान करिए, मतलब इतने से संतुष्ट नहीं है, ग्रंथों का अध्ययन करना, हरिनाम जप करना, है ना, इतने से संतुष्ट नहीं है। जीव गोस्वामी से मांगते हैं क्या? साक्षात सेवा मुझे आप दीजिए। किंतु वे टालते थे। कौन टालते थे? जीव गोस्वामी टालते थे, हैं, केवल भजन करने का आदेश देते थे कि भजन में मन लगाओ अपना, अभी सेवा मांगते हैं, है ना। एक बार कृष्णदास ने जीव गोस्वामी से कहा, आपके चरणों में मेरा यही विनम्र निवेदन है, बिना सेवा किए वृंदावन में अधिक देर तक नहीं ठहर सकूँगा, मैं नहीं ठहर पाऊँगा, अगर सेवा नहीं मिलेगी वृंदावन में तो ठहर नहीं पाऊँगा। तो कृष्णदास की तीव्र सेवा की आकांक्षा अनुभव करके जीव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए, आदेश दिया, कृष्णदास तुम निर्मल चित्त से कुंज स्थलियों का मार्जन करते हुए भक्ति ग्रंथों का अध्ययन और कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण करो। तो क्या कहा? कुंज स्थलियों का मार्जन करो, है? तो कृष्णदास जी राधा कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन करने लगे और कुंज सेवा की अभिलाषा से साधुओं भक्तों के साथ वहाँ जाते थे। तो ध्यान में निमग्न होते हैं, कभी हरि संकीर्तन में संयुक्त होते हैं और मंत्र का जप करते थे, और निशा अवसान में, निशा अवसान समझते क्या है? निशांत काल, 3:22 से निशांत काल शुरू होता है, तो निशा अवसान के समय हाँ, ये क्या करते थे, एक सोहनी के द्वारा कुंज आदि को निर्मल करते थे। सोहनी, उसको क्या बोलते हैं, खुरपा, है ना, लोहे का होता है ना, उससे सोहनी, क्षमा करना, सोहनी तो झाड़ू है ना, झाड़ू के द्वारा। तो इस प्रकार से 12 साल तक इनकी कठोर साधना हुई। कितने साल तक? 12 साल तक इन्होंने कठोर साधना की। अब इनका सिद्ध स्वरूप, मतलब इनको जो स्वरूप है इनका प्रकट हो गया। तो इनका स्वरूप क्या है, मंजरी का स्वरूप है ना, तो स्वरूप प्रकट हो गया इनका। एक बार श्री कृष्णदास रात्रि के समय भजन कुटीर में बैठे हैं, राधा श्याम सुंदर की अष्टकालीन लीला का स्मरण कर रहे हैं। अष्टकालीन लीला, अष्ट प्रहर, राधा कृष्ण की आठों प्रहर की अलग अलग लीलाएं। 24 घंटा जो दिन होता है उसमें 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहर की अलग अलग लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। लीला स्मरण में देखा, लीला चिंतन में इन्होंने क्या देखा, श्याम सुंदर जी ब्रज सुंदरियों के साथ कुंज में नृत्य गीत कर रहे हैं, और राधा रानी अपनी सखियों के साथ एक दूसरे की बाहें पकड़कर मंडली बनाए हुए हैं। श्याम सुंदर जी उनसे घिरे हुए हैं और श्याम सुंदर और ब्रज सुंदरियां नृत्य गीत में निमग्न हैं। कई सखियां वाद्य यंत्र बजा रही हैं, कई प्रकार के वाद्य बजा रही हैं, कई मधुर कंठ से गीत गा रही हैं, और श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी उनके साथ नृत्य कर रही हैं, और श्याम सुंदर कभी राधा रानी के नृत्य का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से नृत्य के अंत में पलंग पर शयन, अब किशोर किशोरी शयन करने लगे, तो सखियां जो है छिद्र से गवाक्ष रंध्र से मिलन का दर्शन कर रही हैं, और निशावसान पर सखियों ने उनकी सुख निद्रा भंग की, राधा श्याम सुंदर को जगाया। तो इस प्रकार से जो है अब निशा अवसान हो गया। तो ये लीला इन्होंने मतलब रात्रि में दर्शन की, लीला का दर्शन किया, अब निशांत काल शुरू हो गया, तो अब इन्होंने शुरू कर दी अपनी सेवा करना ना? तो रासस्थली और कुंजों का मार्जन करने के लिए अपने एक हाथ में सोहनी और दूसरे हाथ में घास छीनने वाला लोहे का खुरपा लेकर राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए निधुवन की ओर चले। वृंदावन में है निधुवन, तो निधुवन की ओर चल दें, चल दिए। एक हाथ में क्या है, झाड़ू, और दूसरे हाथ में खुरपा, वो निधुवन की ओर चल दिए, है ना। और वहाँ पर अब जो है प्रत्यक्ष इनको दर्शन हुआ, क्या चिन्हों का, कि राधा कृष्ण ने नृत्य किया, यहाँ पर विलास किया है, और सब जो लताएं हैं वो क्या हो गई हैं, विदलित हो गई हैं, मतलब कुचली हैं। भगवान के चरणों के चिन्ह भी हैं, राधा रानी के चरण के चिन्ह हैं, बहुत से फूल कुचले हुए हैं, और बहुत सुंदर उस कुंज की शोभा देख रहे हैं। अचानक क्या देखा उन्होंने, कि एक वृक्ष के नीचे सोने का नूपुर मिला। सोने का नूपुर मिला, कैसा, जैसे कि सूर्य का उदय हुआ हो ऐसा नूपुर मिला। देख करके रत्नों से खचित सोने के नूपुर को देख करके विस्मित हो गए, और उसकी प्रकाश से दिशाएं, दिशाओं में प्रकाश फैल रहा है। कैसा नूपुर था, क्योंकि अभी तो निशा काल है, 3:22 पर जो है क्या प्रकाश होता है, थोड़ी प्रकाश होता है, लेकिन नूपुर के द्वारा सब दिशाओं में प्रकाश फैल रहा है, है? तो नूपुर किसका है, सोच सोच कर कृष्णदास व्याकुल हो रहे हैं, तो आकाशवाणी हुई। आप लोग सुनने ध्यान से, क्या हुआ उस समय, आकाशवाणी हुई, क्योंकि बड़े आश्चर्य की बात है ना, ऐसा नूपुर मिले, है, आकाशवाणी हुई कि जत्न पूर्वक इसकी रक्षा करो। मतलब पूरी तरह से सूचना नहीं मिली कि क्या है ये, लेकिन आदेश मिला आकाशवाणी के द्वारा, क्या आदेश मिला, रक्षा करो इस नूपुर की, यत्न पूर्वक रक्षा करो। तो इनको जो है बहुत आनंद हुआ, अब मस्तक से स्पर्श कराया नूपुर को, मस्तक से स्पर्श कराया, वो कराएंगे, है ना, किसी को भी मिलेगा ऐसी चीज मिलेगी दिव्य चीज, तो क्या करेगा, माथे पर स्पर्श करेंगे। मस्तक पर स्पर्श कराया तो आनंद के अश्रु एकदम निकलने लगे और शरीर में कंपन शुरू हो गया, वो ऐसा नूपुर था। उस समय जो है पसीना, कंपन, अश्रु, पुलक, ये सब जो है उनके शरीर में होने लगा, और मुख से केवल राधे राधे, श्याम श्याम, बहुत प्रयत्न करने पर भी अपनी भावना को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वो एकदम क्या हो गए, पागल हो गए प्रेम में। अब नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं अपने को, हाँ, कि कैसे अपने नियंत्रण करें, है ना। इसके तो नूपुर की रक्षा करनी है, हैं। तो किसी प्रकार से धैर्य धारण किया और अब नूपुर को छिपाएं कहाँ, छिपाने की जगह कहाँ है, वो तो प्रकाश फैला रहा है, अपने उत्तरी वस्त्र में छिपा लिया। देखो ऐसी चीज़ें भी हैं, हैं। अगर कपड़े में छिपा लो तो ढक जाएगा, फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ है, हैं। अगर हटा दो कपड़ा तो इतना प्रकाश फैलेगा कि सब दिशाएं फैलेंगी। ऐसी चीज़ें, मतलब कैसी दिव्य वस्तु है, हैं। तो वस्त्र में अगर ढक दिया तो फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ है यहाँ पर, क्या है। और वस्त्र हटा लो तो इतना प्रकाश, सब दिशाओं का प्रकाश, सब दिशाओं में प्रकाश फैलेगा। तो सफल हो गए। अब उनके पास तो छिपाने के लिए कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन कपड़ा रख दिया तो हो गया, है ना। ये भी एक प्रयोग था, छिपाने के लिए एक प्रयोग किया उन्होंने और प्रयोग सफल हो गया, छिपा लिया। अच्छा, अब नृत्य स्थली की सफाई की, राशि स्थली की सफाई की, कुंजों का मार्जन किया, ऐसे समय पर सखियों के साथ राधा रानी छिपी छिपी, अपने शोभा को छिपाए हुए राधा रानी उस नूपुर को खोजती हुई वहां पर आई। किसका नूपुर था? राधा रानी का नूपुर था। प्रिय सखी विशाखा के साथ लताओं के पीछे खड़े होकर के ललिता को भेजा कि तुम खोजो। अब वो छिपी हैं, राधा रानी छिपी हैं, उनके साथ में विशाखा हैं, ललिता को तुम जाओ खोजो। ललिता जी एक वृद्धा दरिद्रा ब्राह्मणी का वेश धारण करके कृष्णदास के समीप पहुंची। ललिता ने बूढ़ी गरीब ब्राह्मणी का वेश धारण किया, एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया। ललिता तो ब्राह्मणी नहीं है, राधा रानी की सखी है, या कहें तो ग्वालिन है, ब्राह्मणी का रूप धारण किया। ब्राह्मणी में भी कैसी दरिद्र, कैसे वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र, उनके वस्त्र क्या पुराने होते, ललिता देवी के वस्त्र तो कितने दिव्य हैं, पुराने वस्त्र, एक ब्राह्मणी है, पुराने वस्त्र धारण किए हैं, जीर्ण शीर्ण और बूढ़ी भी है। कि ललिता सखी क्या बूढ़ी है, तरुणी है, है ना। तो वृद्धा ब्राह्मणी और वो भी कैसी निर्धन है, करूर धारण किया और बोली, महात्मा कल सायंकाल मेरी नववधु यहाँ पर आई थी। कौन आई थी? मेरी नववधु आई थी यहाँ पर और फूल चुनने के लिए आई थी, अचानक शेर को देख करके डर गई और भाग करके चली गई। अब ये कहानी तो बनानी पड़ेगी ना, कहानी बनाई उन्होंने, मेरी नववधु आई थी, अचानक एक शेर को देखा तो भागी। इस हड़बड़ाहट में उसके बाएं चरण का नूपुर खुलकर नीचे गिर पड़ा और उसको पता नहीं चला। अगर तुमको नूपुर यहाँ पड़ा मिला हो तो मुझे बताओ। अब कृष्णदास ने अपने भाव को छिपाया, समझ गए, बहुत रहस्य। अब ये जो है, मतलब क्या क्या रहस्य है वो भी जानना चाहते हैं, है ना, इसमें भी कुछ रहस्य है। तो उन्होंने ललिता जी से प्रश्न किए, हे देवी आप कौन हैं? सबसे पहले यही तो प्रश्न किया जाएगा, क्या नूपुर ऐसे दे देंगे, है? प्रश्न किया, हे देवी आप कौन हैं? आपका निवास स्थान कहाँ है? कृपया अपना परिचय देकर मेरे कौतूहल को शांत करिए। अभी नूपुर कैसे बताएं कि मैं मिला है नूपुर, है? और क्या दे देंगे ऐसे नूपुर, है? मेरे कौतूहल को शांत करिए, कैसे? अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, आपका स्थान, है? तो ललिता देवी को अब और कहानी सुनानी पड़ेगी, बातें तो बनानी पड़ेंगी ना, है? तो ललिता ने उत्तर दिया, हे साधु मैं कान्यकुब्ज की ब्राह्मणी हूँ, कन्नौज की ब्राह्मणी हूँ, कन्नौज की ब्राह्मणी हूँ, है? कन्नौज से विवाहित हुई थी, मतलब मायका कन्नौज में है और यहाँ पर मैं रहती हूँ, कन्नौज की ब्राह्मणी हूँ। मथुरा मंडल के यावट नामक ग्राम के निकट मेरा घर है, जावट राधा रानी रहती हैं, उनकी ससुराल है, तो उसके निकट मेरा घर है, लेकिन राधा रानी से कोई संबंध नहीं पता नहीं अपना। जावट के निकट मेरा घर है और मेरा नाम है राधा दासी, ठीक है, ये बात तो सही है, राधा दासी नाम तो नहीं है, काम से तो है ना राधा दासी। तो ललिता जी ने आगे कहा, हे कृष्णदास, तुम नित्य कुंज का मार्जन करते हो, इसलिए अपने नववधु के नूपुर के विषय में पूछताछ के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी नववधु है वो, ये बूढ़ी है, राधा रानी इनकी नववधु है, नववधु है ना, कहीं वो उज्जवल विशिष्ट नूपुर तुमको तो नहीं मिला, मुझे सच सच बताकर मेरे संशय का निवारण करो। साधु पुरुष झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप साधु आज झूठ नहीं बोलते, हम तो झूठ बोल सकते हैं, साधु झूठ नहीं बोलते। कृष्णदास ने संशय पूर्ण चित्त से और विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि हे देवी, आपका अनुभव सही है, मुझे एक अपराकृत दिव्य इंद्र नील मणि से खचित स्वर्ण नूपुर मिला है। इस विशिष्ट नूपुर के स्पर्श मात्र से मैं राधा प्रेम से उद्विलित हो गया हूं, मुझे राधा, मेरे मुख से बार बार राधा का नाम निकल रहा है, मतलब वो ऐसा दिव्य नूपुर है, तो मुझे विश्वास हो गया है कि किसी साधारण स्त्री का ये नूपुर नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से अपराकृत नूपुर के साथ कोई रहस्य है। तो ये जो नूपुर है ये किसी सामान्य स्त्री का, प्राकृत स्त्री का नहीं हो सकता है, इसलिए आपकी वधु भी निश्चित रूप से इस मर्त लोक की नहीं है, इस पृथ्वी की नहीं है, आपकी नववधु है, ऐसा अलौकिक नूपुर आपकी वधु का कदापि नहीं हो सकता है, ठीक है ना, सुन रहे हो, अरे आंखें बंद करके सुन, आंखें बंद करके नहीं सुनना, आंखें बंद करोगे तो कान भी बंद हो जाएंगे, ठीक है, विधि कान, आंखें खोल करके और कान खोल करके सुनना है, तो क्या सुना, हाँ, आपकी आपकी नववधु का नहीं हो सकता, ये तो निश्चित है, नूपुर तो मिला है, मतलब आपकी बात कुछ तो सही है या कुछ सही नहीं है, आपकी नववधु का, पुत्र वधु का ये नूपुर नहीं हो सकता, इसलिए मेरा उत्साह नहीं हो रहा है आपको प्रदान करने के लिए, सही बात है, आपको देने में मेरा उत्साह नहीं हो रहा है वो नूपुर, आपके जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से आपकी दरिद्रता दिखाई पड़ती कि आप इतनी दरिद्र हो। मेरे फटे फटे पुराने कपड़े पहने हैं और नूपुर मांग रहे हो हमसे, हैं, आप जैसी दरिद्रा की बहु नींद्र नील मणि खचित स्वर्ण नूपुर पहन सके, ये भी युक्त बात नहीं, युक्ति संगत नहीं है, इस पर भी आपकी वधु यदि अपने दूसरे चरण में बिल्कुल ऐसा ही नूपुर दिखा दे, फिर भी अगर आपकी वधु आए अपने दूसरे चरण में ऐसा ही नूपुर दिखा दे, तो मैं आपके गांव के 5-10 व्यक्तियों के सामने इस नूपुर को आपको दे सकता हूं, उसमें भी शर्त है आपके गांव के 5-10 व्यक्ति और भी आए, अब तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, झूठ बोलने में बड़ा संकट होता है, अभी तो बड़े संकट में फंसा दी आपके गांव के, अब आपके गांव के 5-10 आदमी हो रहे हैं, तो अब राधा रानी सखियों के साथ छिप करके ये वार्तालाप को सुन रही, अब देखा ललिता जी की चतुरता अब काम नहीं, उनको कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है, ललिता देवी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है, तो फिर राधा रानी सामने आ गई और बोली, साधु तुम अभी कह रहे थे अलौकिक नूपुर किसी पृथ्वी की स्त्री का नहीं है, तो क्या वृंदावन की सारी वस्तुएं अलौकिक नहीं है। अब राधा रानी ने अपना तर्क दिया, तुमने कहा कि ये अलौकिक नूपुर है, ये अलौकिक नूपुर है, किसी लौकिक व्यक्ति का नहीं है, तो क्या वृंदावन की हर चीज अलौकिक नहीं है, तो कृष्णदास जी ने बहुत चतुर थे, राधा रानी को भी हरा दिया। राधा रानी ने कहा, अच्छा उत्तर था ना, भाई वृंदावन में तो हर चीज अलौकिक है ना, तो उत्तर दिया, हे देवी, आपका ही कथन वृंदावन की समस्त वस्तुएं अपराकृत हैं, अलौकिक हैं, किंतु ये हम लोगों को वैसे नहीं दिखाई दे रहे, हम लोगों को वैसे नहीं दिखाई दे रही हैं, है, तुझे यहाँ की भूमि चिंतामणि से परिपूर्ण है, लेकिन अभी तो हमें मिट्टी की दिखाई पड़ रही है। अब क्या हुआ, अब राधा रानी भी हार गई, अब राधा रानी के पास भी उत्तर नहीं, अब क्या उत्तर है, हार गई है। तो फिर ललिता जी जो है अब अपना काम बनाने के लिए उनको अब हृदय रहस्य खोलना पड़ा, कि रहस्य खोले बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत वो जो है तार्किक व्यक्ति है, ये बड़ा मुश्किल है इससे जीतना है। तो ललिता जी जो है बोली, हे साधु तुम्हारा कथन सत्य है, तुमको मिला ये नूपुर अप्राकृत है, इसके स्वामिनी भी अप्राकृत हैं। तो कृष्णदास जी रहस्य को सुनकर के बोले, हे देवियों आप लोगों की बातों को मैं समझ नहीं सकता, मेरे पास बुद्धि नहीं है, आपकी बातों को समझने की बुद्धि मेरे पास नहीं है, तो आप लोगों के अभिप्राय को जानना चाहता हूँ, संशय दूर करिए। तो ललिता देवी ने बोला, बोली, हे साधु मेरी दाहिनी ओर जो हंस रही हैं ये ही अलौकिक नूपुर के स्वामिनी हैं, और ये ब्रजभानु राजा की सुपुत्री हैं, भगवान कृष्ण की प्रेयसी हैं, जावट गांव की रहने वाली हैं, इन देवी का नाम है श्रीमती राधिका। हरि बोल, हरि बोल। अलौकिक परिचय पाकर कृष्णदास पुलकित हो गए, पूरा शरीर पुलकित हो गया है, भावविष्ट हो गए। हे कृपामयी मैं बहुत दुखी हूँ, श्रीमती राधा रानी के चरण कमल से नूपुर कैसे गिर पड़ा, नृत्यशाला में कैसे गिरा, इस रहस्य का उद्घाटन करके मेरा मुझे मेरे चित्त को शांति प्रदान करिए। अब वर्णन करिए, घटनाक्रम का वर्णन करिए। किसने कहा, श्यामानंद, अभी श्यामानंद नहीं है, अभी कृष्णदास हैं, किससे बोल रहे हैं, नृत्य से, घटनाक्रम का वर्णन करिए विस्तार पूर्वक कि कैसे गिरा। तो ललिता से कहा, हे कृष्णदास यद्यपि विषय बहुत रहस्यपूर्ण है, चूंकि तुम भाव मार्ग में सिद्धि प्राप्त कर चुके हो, लीला आस्वादन के योग्य बन चुके हो, इसलिए संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ, अब तुम सुनो। तो हे साधु गुप्त रूप से हम आपके पास आए हैं, ये नूपुर जो है गिर गया, तो उसमें उन्होंने बताया कि भगवान जो है ब्रज युवतियों के साथ नृत्य लीला कर रहे हैं, निशा की समाप्ति पर भी राधा श्याम सुंदर को रास रस के समुद्र में निमग्न देख करके तोता और मैना जो है श्लोक का पाठ करते हैं। क्या श्लोक का पाठ करते हैं कि अब सवेरा होने वाला है, राधा कृष्ण अब अपने अपने घर चले जाएं। तो भय से व्याकुल होकर के अपने अपने घर जाने का निश्चय करके सभी दिशाओं में दृश्य दौड़ाते हुए सखियों के साथ रंगशाला से निकले, राधा और कृष्ण दोनों निकले। राधा रानी बहुत तीव्र गति से जाती हुई उनके बाएं चरण का मंजुघोष नामक इंद्र नीलमणि खचित स्वर्ण नूपुर रंगशाला में गिर पड़ा। तो ये जान करके कि अब रात्रि समाप्त हो रही है, राधा रानी बहुत तेजी से चली तो रंगशाला में नूपुर खिसक गया, गिर गया। अपने घर पहुंच करके राधा रानी ने अपने बाएं चरण पर जब देखा तो नूपुर विहीन संकेत हो गई, घबराकर सखियों से कहा कि रत्न समूह खचित स्वर्ण नूपुर जिसे कल सायंकाल मेरी सास ने स्नेह पूर्वक भेंट के रूप में दिया था, बाएं चरण से वो खिसक गया है, अब रास्ते में गिरा। अब एक संभावना है, रास्ते में गिरा, राधा रानी कह रही हैं रास्ते में गिरा है, या निकुंज में गिरा है, या नृत्यशाला में गिरा है, तीन स्थानों में से कहीं गिरा है, आप क्या करना है तुम लोग निश्चय करो। राधा रानी अपने सखियों से कहती हैं, और किसने दिया था मुझे नूपुर, सास ने दिया था, जटिला सास ने, वो कटु भाषणी है, वो देखेगी तो बहुत कड़वे वचन बोलेगी। इस सुनकर एक सखी ने कहा कि रास्ते में गिर गया होगा, तुम बहुत तेजी से चली हो, उसे बोली निकुंज में गिर गया होगा, तीसरे ने कहा नृत्यशाला में हो सकता गिर गया हो। तो सोच विचार चल रहा था कि वृंदा देवी आई वहां पर, ये सब घटना ललिता जी बता रही हैं किसको, कृष्णदास को, कि अभी जावट में राधा रानी घर में चर्चा चल रही है तब तक वृंदा देवी आ गई। वृंदा देवी वो पूरी वृंदावन की जो है वो क्या है, देवी हैं, और उनको हर घटना का क्रम पता होता है, सब सब पता रहता है उनके। वो बोली तुम चिंता मत करो, मैंने विचक्षण नामक सुख से सुना है, वृंदा देवी के कितने हजारों तोते हैं, पता नहीं लाखों की संख्या में तोते हैं, वो जो है सब सूचना देते रहते हैं वृंदा देवी को कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो विचक्षण नाम का जो मेरा दूत है, ये सब उनके जासूस हैं वृंदा देवी के, राधा कृष्ण की लीला में सहयोग करने वाले इनके जासूस हैं, हैं। और राधा कृष्ण का मिलन इनकी सास को पता ना चले, जटिला को ना पता चले, वो सब तोते और मैना जो है सुख सारिका बोलते हैं, ये सहायता करते हैं वृंदा देवी की। तो वृंदा देवी ने कहा विचक्षण नामक जो मेरा सुख है उसने सूचना दी है मुझे कि वो नूपुर जो है रासस्थली में गिरा है और किसी सज्जन को प्राप्त हुआ है। अब हम जो है रासस्थली में जाएंगी और सज्जन से नूपुर लेके आएंगे। वृंदा के वचनों को सुनकर के राधा रानी ने कहा, सखियों ने राधा रानी से कहा, हे राधे के, आपको नूपुर लाने के लिए अपनी विशिष्ट सखियों के साथ नृत्यशाला में जाना होगा। तो ललिता सखी ने कृष्णदास से कहा, हे सज्जन, हम सब विचार विमर्श करने के बाद गुप्त रूप से आपके पास आई हैं। अभी सास सो रही है, अभी कटुभाषिणी सास सो रही है, है? तो उसके सोकर उठने से पहले ही जिस प्रकार नूपुर वापस लेकर हम घर पहुंच जाएं, तुम अति शीघ्र नूपुर दे दो कि सास को पता ना चले कि राधा रानी गई थी कृष्ण से मिलने के लिए, हैं। तो इसके बदले में जो भी तुम वस्तु चाहते हो हम दे देंगे, हैं। तो ललिता के ये वर्णन को सुनकर के पुलकित हो गए, ललिता के चरणों में गिर गए और उत्तरी वस्त्र में रखे हुए बाएं चरण के इंद्र नील मणि खचित मंजुघोष नामक नूपुर को निकाला और पहले अपने मस्तक पर धारण किया। तब ललिता सखी को समर्पित करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। ललिता सखी अभी किस रूप में है? वृद्धा निर्धना ब्राह्मणी के रूप में, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए, नूपुर दिया। तो उन्होंने कहा, तुम मेरे स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा रखते हो किंतु उन प्राकृत नेत्रों के द्वारा मेरे अप्राकृत दिव्य रूप को कैसे देख पाओगे। ललिता कहती है, तुम इन नेत्रों से कैसे मेरा रूप देख पाओगे। तो कृष्णदास ने उत्कंठित होकर कहा, हे देवी, आपकी कृपा होने से असंभव भी संभव हो सकता है, मुझे आप अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराइए। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की, ललिता ने कृष्णदास को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना दिव्य रूप का दर्शन कराया। तो दिव्य रूप का दर्शन करके किसका? ललिता का। शरीर में पसीना, कंपन, अश्रु, पुलक, ये सब बेकार हुए और प्रेम से कंपित होकर के मूर्छित होकर गिर गए, भूमि पर गिर गए। ललिता जी ने अपने कर कमल से उनके शरीर से धूल जो है हटा करके और चेतना लौटाई और धैर्य प्रदान किया। तब कृष्णदास से पूछा कि तुम्हारे मन में कोई और अभिलाषा हो तो जल्दी बताओ, अभी हमें जाना है, अब जल्दी बताओ और कुछ अभिलाषा है। तो कृष्णदास जी जो है गदगद कंठ से बोले, हे देवी, अगर सचमुच मेरे मन की अभिलाषा पूर्ण करना चाहती हो तो कृपा करो, जिससे मैं आपकी दासी बनकर राधा श्याम सुंदर के निकुंज में सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर सकूं। ऐसा करो। ललिता जी ने उत्तर दिया, कृष्णदास, तुम्हारे प्राकृत देह से तो ये कुंज सेवा प्राप्त नहीं हो सकती, अभी तुम्हारा क्या शरीर है, प्राकृत शरीर है, हैं? लेकिन तुम अपने मानसी सेवा करते रहो, अपने मन में तुम सेवा करते रहो, हैं? और जब प्राकृत देह समाप्त होगा तुम्हारा तो सिद्ध शरीर तुमको प्राप्त होगा और राधा श्याम सुंदर की कुंज सेवा का अधिकार प्राप्त होगा। और कोई अभिलाषा हो तो बताओ, अब ये तो निश्चित है तुम्हें मिलेगा, हैं? मंजरी का शरीर मिलेगा और तुम कुंज की सेवा तुम्हें मिलेगी, लेकिन अभी समय और कुछ चाहते हो तो बताओ। तो फिर उन्होंने कहा, अब मेरे मन में अभिलाषा है श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का दर्शन करूं, हैं? आप किसी प्रकार से तुरंत इनके दर्शन कराइए। तो प्रार्थना सुनकर ललिता जी चिंतित हो गई, लेकिन राधा रानी बोली ललिता से, अब ललिता के पास तो अधिकार नहीं राधा रानी के चरणों का दर्शन कराने का। तो राधा रानी स्वयं बोली, ललिता से बोली, तुम कृष्णदास को मेरा मंत्र प्रदान करो। राधा रानी ने ललिता को आज्ञा दी कि तुम कृष्णदास को मेरा मंत्र प्रदान करो। फिर वृंदा से कहा कि हे वृंदे, तुम कृष्णदास को मेरे सरोवर में स्नान करा करके लाओ। ललिता को आज्ञा दी राधा रानी ने कि मेरा मंत्र, राधा मंत्र प्रदान करो। कृष्णदास को, और वृंदा को आज्ञा दी कि ले जाओ इनको कहाँ पर स्नान कराओ, राधा कुंड में, राधा कुंड में स्नान कराओ। तो काफ़ी दूर है वहाँ से, यहाँ जो मैं सेवा कुंड से काफ़ी दूर है। तो वृंदा देवी तो राधा रानी कहती है वृंदा से कि तुम जो है इनको स्नान कराओ राधा कुंड में, तब इनको मंजरी का देह प्राप्त होगा, तब ये दर्शन कर पाएगी, मंजरी के देह से मेरा दर्शन कर पाएगी। तो तुम दोनों जो है मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करो। ललिता क्या करेंगी? राधा मंदिर प्रदान करेंगी, और वृंदा देवी क्या करेंगी? ले जाएंगे राधा कुंड में स्नान करा के वापस लाएंगे। तो जाएं, ये जाएंगे प्राकृत शरीर जो पुरुष का है, और आएंगे वापस मंजरी के शरीर से वापस आएंगे। तो इस प्रकार से ललिता सखी ने कृष्णदास को सर्वेश्वर्य पूर्ण राधा मंत्र प्रदान किया। उस मंत्र को जपते हुए कृष्णदास ने जैसे राधा कुंड में स्नान किया, तुरंत मंजरी स्वरूप प्राप्त हो गया। अब मंजरी स्वरूप के दर्शन जो है आप कर रही हैं सखियाँ, ललिता जी जो है इनको लेकर के मंजू घोष नूपुर अपने मस्तक पर रख करके ललिता जी और रूप मंजरी के पीछे ये राधा रानी के निकुंज मंदिर में आप प्रवेश करती हैं। ललिता जी ने चरणारविंद में, चरण कमलों में इनको प्रणाम करवाया और राधा रानी से प्रार्थना की कि इसके मस्तक पर अपना चरण कमल रखिए और अपने गणों में गणना करिए। अब ये जो है आपकी मंजरी है, अपने गणों में इसकी गणना करिए। तो राधा रानी ने अपने हाथ से अपने चरणों से उठाया इस मंजरी को और बोली कि जो पहले कृष्ण प्रिया थी, सामने मेरे सामने वही मंजरी खड़ी है, इसलिए मैं विशेष कृपा करूंगी और अपने गणों में इसको स्थान दिलाऊंगी। तब कहा कि तुम्हें कुंज सेवा का अधिकार प्राप्त हो चुका है, तुम ललिता की युद्ध में सदा रहती हो। फिर राधा रानी ने ललिता को आदेश दिया, ललिता ने राधा रानी के आदेश से नूपुर का चिन्ह देने के लिए राधा रानी के स्वर्ण नूपुर का कृष्णदास जी के ललाट से स्पर्श कराया। राधा रानी के आदेश से ललिता ने वो नूपुर कृष्णदास के ललाट में स्पर्श कराया और वो हरि मंदिर तिलक राधा रानी के चरणाकृत वाली दिव्य नूपुर तिलक में परिवर्तित हो गया। ये हरि मंदिर तिलक है, ये जो ऊर्ध्वपुंड तिलक है ना, ये हरि मंदिर तिलक भी इसको कहते हैं। तो नूपुर का स्पर्श कराया तो हरि मंदिर तिलक जो है बदल करके अब वो क्या हो गया, नूपुर तिलक उज्ज्वल तिलक का दर्शन करके राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार से जो है इनको नया तिलक प्राप्त हुआ। ललिता सखी ने फिर जो है श्याम मोहन तिलक इसका नाम दिया। फिर ललिता जी ने कहा कि अब आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद, श्यामा को तुमने आनंद प्रदान किया है यानी राधा रानी को, आज तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद। विशाखा सखी ने फिर इनको नाम दिया कनक मंजरी, इस मंजरी के रूप में तुम्हारा कनक मंजरी नाम है। कनक कांति युग स्वरूप का दर्शन करके प्रफुल्लित होकर उनको कनक मंजरी नाम से संबोधित किया। राधा रानी अब बोली, हे कृष्ण प्रिय कनक मंजरी, कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली, मेरे नेत्रों को तृप्ति प्रदान करने वाली तुम ललिता विशाखा जैसी ही तुम भी मेरी प्रिया हो, राधा रानी कहती हैं। तो प्रणाम करते हुए फिर कहा, ललिता विशाखा ने कहा राधा रानी को प्रणाम करते हुए, ये देवी आपकी कृपा से अलौकिक महिमा को प्राप्त हो गई है। दालिंब वृक्ष के नीचे कुंज के प्रांगण में आपके नूपुर की प्राप्ति के सौभाग्य से ये जो है आपकी विशिष्ट सखी बन चुकी है कनक मंजरी। राधा रानी ने फिर कहा, हे कनक मंजरी, तुमने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया है, अब तुम मर्त्यलोक में वापस जाओ क्योंकि तुम्हारा कुछ कार्य अभी है, इस पृथ्वी में तुम्हारा कुछ कार्य है, अब तुम इस पृथ्वी लोक में वापस जाओ, मेरी कृपा से ये मधुर स्मृति तुम्हारे तुम्हें आनंद प्रदान करती रहेगी, अभी तुम्हें जाना है, जाना है पहले के शरीर, पहले का शरीर तुम्हें प्राप्त करना है। तो कनक मंजरी आर्तनाद करने लगी, विवरण हो गई, मलिन हो गई और आंसुओं से भरे हुए वो बोले राधा रानी से कि अपने चरणों के निकट से आप मुझको आप मर्त्य लोक में मत भेजिए। आपने अब चरणों की सेवा का जो अवसर प्रदान किया है, अब मुझे मत छीनिए, मुझसे अपने चरणों की सेवा मत छीनिए। राधा रानी ने उनकी मार्मिक पीड़ा का अनुभव किया, तो सिर पर जो है अपना हाथ रख करके वो बोली कि हे सहचरी, तुम मेरी संगिनी हो, लेकिन उद्देश्य विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी तुम्हें रहना होगा, मर्त्यलोक में रहना होगा। किस नाम से? श्यामानंद के नाम से रहना होगा और कार्य करना होगा, और इसके बाद कार्य पूर्ण होने पर मेरी नित्य सेवा में तुम आ जाओगी, वापस आ जाओगी। और मेरे वियोग के कारण तुम कातर हो रही हो, तो मैं तुम्हें ये दिव्य विग्रह, श्याम सुंदर का दिव्य विग्रह प्रदान कर रही हूँ, ये इनके तुम सेवा करो, श्याम सुंदर का दिव्य विग्रह। और मर्त्यलोकवासी भी इनके दर्शन करके अभीष्ट प्राप्त करेंगे, है ना। तो श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह दिया राधा रानी अपने हाथ से। तो राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, तो राधा रानी ने स्वयं जो है अपने हृदय से निकाल करके वो अर्चा विग्रह उनको दिया। इतने बड़े हैं वो मूल श्याम सुंदर। जैसे राधा रमन भी गए नहीं वृंदावन से बाहर, तो श्याम सुंदर भी जो है वृंदावन से बाहर नहीं गए, है ना। कि इतने छोटे हैं तो उनको भी छिपाया जा सकता है, तो औरंगजेब से कोई खतरा नहीं था कि भाई वो जो है खंडित करेगा। तो राधा रमन और श्याम सुंदर ये दो अर्चा विग्रह ऐसे हैं जो कि किसी ने बनाए नहीं है, वो राधा रानी ने स्वयं प्रकट किया अपने हृदय से श्याम सुंदर, और राधा रमन जी जो है स्वयं शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। तो दोनों अर्चा विग्रह जो है ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति के हाथ से बनाए नहीं गए हैं। तो इस तरह से राधा रानी ने उनको अर्चा विग्रह का प्रदान किया, और फिर ये कहा कि तुम बाद में अपना मर्द शरीर छोड़ करके और मेरी सेवा में आओगी। अब श्यामानंद प्रभु को वृंदावन की कुंज सेवा के समय राधा रानी के नूपुर की प्राप्ति, उज्ज्वल बिंदुयुक्त तिलक की प्राप्ति, श्याम सुंदर का वो अर्चा विग्रह की प्राप्ति है, और ये सब बातें ललिता सखी ने क्या कहा कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना, अब ये आदेश दिया है। क्या क्या बातें हुई? राधा रानी का नूपुर प्राप्त हुआ और नूपुर तिलक प्राप्त हुआ है, और श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह प्राप्त हुआ। ये घटना जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना, क्योंकि बाकी सब लोग तुमसे सीनियर हैं, जीव गोस्वामी भी सीनियर हैं, लेकिन उनको तुम बता सकते हो है, क्योंकि वो उनको जो है कुछ है, वो अनुताप नहीं होगा। सीनियर को बताते हैं, जूनियर अपनी कुछ कृपा प्राप्त हुई तो सीनियर को लगता है कि मुझे तो प्राप्त हुई, मेरे जूनियर को कैसे प्राप्त हो गई, है ना। तो किसी को नहीं बताना जीव गोस्वामी के अलावा। जीव गोस्वामी इतने विनम्र हैं, उनको बताओगे तो वो नहीं सोचेंगे कि इनको कैसे प्राप्त हुई, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुई, जीव गोस्वामी के नाम है। तो श्यामन ये ललिता देवी ने कहा कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना, तुम्हें मेरी शपथ है, अगर तुम ऐसा करोगी, किसी जीव गोस्वामी के अलावा किसी और को बताओगी, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और राधा रानी के चरणों की सेवा में भी बाधा आ जाएगी। बहुत बड़ा खतरा है, किसी को बताया जीव गोस्वामी के अलावा तो क्या हो गया, एक तो शरीर छूट जाएगा, तो कोई कहे शरीर छूट जाए तो अच्छा है राधा रानी के चरणों की सेवा, नहीं, राधा रानी चरणों की सेवा भी नहीं प्राप्त होगी, है ना। बहुत बहुत खतरा है। ललिता देवी ने आगे कहा, अगर विपत्ति में पड़ जाओ, क्योंकि ये बात ना बताने से विपत्ति आएगी, विपत्ति में पड़ जाओ तो राधा मंत्र का जप करना, तो साक्षात मेरा दर्शन होगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगी उस विपत्ति से। विपत्ति में पड़ोगे ही, अगर नहीं बताओगे तो जो है विपत्ति में पड़ोगे ही, है ना। तो फिर ये मंत्र का जप करना और मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। कौन? ललिता जी दर्शन देंगी। इस प्रकार से अब मंदिरी रूप का परित्याग करके अपने पूर्व रूप में आ गए, कुंज से बाहर आए, और मंज घोष नामक नूपुर के स्पर्श से उनका खुरपा सोने का बन गया था। लोहे का जो खुरपा था वो क्या बन गया है? सोने का बन गया। अब क्या क्या मतलब हुआ जो दिखाई पड़ रहा है, ललाट पर राधा रानी के चरणों की आकृति वाला नूपुर तिलक, वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिखा उनके, और सोने का खुरपा, और सिर पर श्याम सुंदर का दिव्य विग्रह है, और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और जीव गोस्वामी की कुटिया में आए। जीव गोस्वामी कुटिया में आए, जीव गोस्वामी देखा चौंक पड़े। अब गौरवर्ण की देह थी, अब तो शरीर सोने की जैसा शरीर हो गया, गोरे शरीर से कैसे हो गए स्वर्ण जैसा शरीर, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। शरीर का रंग क्या हो गया, बदल गया, गोरे से सोने जैसा, और दूसरा हरि मंदिर आकृति का तिलक बदल गया है, नूपुर तिलक दो हो गया, तीसरा लोहे का खुरपा सोने का हो गया है ना, और चौथा श्याम सुंदर का अर्चा विग्रह, चार परिवर्तन। कृष्णदास से प्रश्न किया, इतने समय तक तुम कहाँ थे? किसने पूछा? जीव गोस्वामी ने पूछा, तुम्हारी देह में ये अपूर्व ये सोने की कांति कहाँ से आई? निश्चित ही आज श्री श्याम सुंदर की या श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त की है तुमने, सत्य सत्य बदलाओ। जीव गोस्वामी कह रहे हैं, जीव गोस्वामी ने अनुमान लगा लिया कि निश्चित रूप से कोई रहस्य की घटना घटी है। हाँ, उन्होंने प्रश्न किए। कृष्णदास जीव गोस्वामी को एकांत में ले गए और पूरी रहस्य घटना का आदि से अंत तक वर्णन किया, और ललिता की चेतावनी भी बता दी कि ललिता देवी जी ने मुझे चेतावनी दी है, क्या जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को ये रहस्य नहीं बताना। तो ये सुनकर के जीव गोस्वामी उन्मत्त हो गए, बच्चे की तरह नृत्य कर रहे हैं, उनको ये नहीं लगा ऐसे नहीं है ना, वो उन्मत्त होकर के बच्चे की तरह नृत्य कर रहे हैं और अश्रुओं की धारा बह रही है, और कृष्णदास का आलिंगन करके बोले, तीनों लोकों में तुम्हें केवल धन्य हो, मनुष्य में केवल तुम्हारा जन्म सार्थक है, तुम्हारे अलावा आज तक किसी ने इस संसार में श्रीमती राधा रानी की ऐसी साक्षात कृपा नहीं प्राप्त की। अब तुमको स्पर्श करके मैं भी परम पवित्र हो गया हूँ, मैं भी धन्य हो गया हूँ। जीव गोस्वामी इतने विनम्र है, वो नहीं सोचते ऐसे, उल्टा नहीं सोचते हैं, है ना। जीव गोस्वामी ने आगे कहा कि अब मैं तुम्हारे हाथ बिक गया हूँ, अपने आप को कृतकृत्य अनुभव कर रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर इतनी असीम कृपा राधा रानी की है, ललिता जी ने तुम्हें श्यामानंद नाम जो दिया है, यही अब वैष्णव समाज में प्रकाशित होगा। जीव गोस्वामी कहते हैं अब वैष्णव समाज में तुम्हारा नाम प्रकाशित होगा, और श्यामानंद तिलक के नाम से ये तिलक की भी ख्याति होगी। जीव गोस्वामी ने कहा है ना, तो फिर अब जीव गोस्वामी ने सोचा कि ये जो कथा प्रसंग है, अगर लोग जो है, लोग तो संशय करेंगे है, संदेह प्रकट करेंगे, श्यामानंद नाम कहाँ से आ गया, ये तिलक कहाँ से आ गया, संदेह प्रकट करेंगे तो फिर क्या उत्तर दिया जाएगा। अब जीव गोस्वामी कहते हैं भाई तुम बता देना कि गुरु की कृपा से हुआ है, और गुरु को तो कुछ पता ही नहीं है, गुरु तो यहाँ है भी नहीं वृंदावन में, वो तो कहाँ पर हैं, अंबिका कालना में, हृदय चैतन्य, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम बताना। जीव गोस्वामी ने कहा कि मेरे गुरु की कृपा से ही ये श्यामानंद नाम मुझे मिला और ये नूपुर तिलक मिला है, तो फिर हाँ, और किसी को और कुछ उत्तर नहीं देना। अब बड़ी समस्या हो गई, अब लोग जो है कई प्रकार की, अब जो है भ्रांतियां मतलब फैल गई, कई प्रकार की भ्रांतियां फैल गई, तो वैष्णवों में संशय पैदा हो गया श्यामानंद को लेकर के। जीव गोस्वामी वैष्णवों के मुकुटमणि हैं, भक्ति शास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने और उनके गुरुदेव का परित्याग करवा करके अपना शिष्य बना लिया है, नया तिलक दे दिया है, नया नाम दे दिया, भाई जीव गोस्वामी ने ऐसा किया है, है? अब जीव गोस्वामी के ऊपर कोई बोले, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोले, जीव गोस्वामी ने अहंकार के कारण ये किया, अब जीव गोस्वामी की निंदा होने लगी, जीव गोस्वामी ने अहंकार के कारण ऐसा किया है। लेकिन फिर जीव गोस्वामी ऐसा काम नहीं कर सकते, उनके अंदर तो अहंकार बिल्कुल नहीं है, फिर कैसे हुआ? तो 100 मुंह से 100 प्रकार की बातें निकल रही हैं, है ना, और जीव गोस्वामी से प्रश्न कौन करे, किसी की हिम्मत नहीं है ना। धीरे धीरे गुरु का त्याग करने की बात गौर देश में पहुंच गई, और वृंदावन गौर मंडल से वृंदावन धाम में जो आए थे दो वैष्णव, उन्होंने सुना तो अंबिका कालना में जाकर के हृदय चैतन्य से ये बताइए कि गुरु का त्याग कर दिया है, कृष्णदास ने आपका त्याग कर दिया है और जीव गोस्वामी को गुरु बना लिया है, और तिलक नया तिलक और नया नाम धारण कर लिया है। तो ये हृदय चैतन्य मर्माहत हो गए ये सुनकर के, ऐसा दुख से दीर्घ होकर के कई शिष्यों को बुलाकर आदेश दिया, शीघ्रता पूर्वक वृंदावन जाओ, कृष्णदास को बांध कर मेरे पास लाओ। जीव गोस्वामी कृष्णदास को अगर नहीं छोड़ते हैं तो जीव गोस्वामी की जिम्मेदारी पर रख करके आना और ये पत्र जीव गोस्वामी को देकर के उनसे उत्तर लाओ। तो अहो कृष्णदास का इतना अधिकार हो गया, अपने पहले गुरु को त्याग करके नया गुरु वरण कर लिया है, ये तो शास्त्र के विरुद्ध है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय में ऐसी घटना नहीं घटी, गुरु द्रोही का तो निस्तार नहीं हो सकता है। अद्वैताचार्य ने अपने पुत्रों का भी त्याग कर दिया था, किंतु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने मर्यादा की रक्षा करते हुए पिता द्वारा त्यागे हुए इन अद्वैत पुत्रों को स्वीकार नहीं किया, शास्त्रों में वर्णन है। तो हृदय चैतन्य के शिष्यों ने वृंदावन जाकर के जीव गोस्वामी को जो है पत्र दिया, किसका पत्र दिया, हृदय चैतन्य का पत्र दिया। जीव गोस्वामी ने उनको आलिंगन किया और जीव गोस्वामी द्वारा पूछने पर उन वैष्णवों ने कहा कि हृदय चैतन्य ने ये पत्र आपकी सेवा में भेजा है, हम लोगों को इसका उत्तर शीघ्र लाने का आदेश दिया है कि आप शीघ्र उत्तर दीजिए, तब तक मैं पत्र का उत्तर लिखता हूँ। जीव गोस्वामी ने कहा आप लोग स्नान करो, प्रसाद ग्रहण करो, तब तक मैं पत्र का उत्तर लिखता हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोग स्नान आदि का कार्य समाप्त करके ही आए हैं, कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र प्रदान करिए, हमारा सब हो गया है, आप पत्र का उत्तर जल्दी दो, बहुत जल्दी दो। जीव गोस्वामी ने पत्र को पढ़ा और बहुत कौतुक अनुभव करने लगे। श्रीमती ललिता सखी ने रहस्य प्रकाशित ना करने का आदेश दिया है, कृष्णदास को आदेश दिया है, तो जीव गोस्वामी ने भी रहस्य को गुप्त रखा। वैष्णवों से कहा हे वैष्णवों, मैंने कभी भी हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य कृष्णदास को अपने सेवक के रूप में ग्रहण नहीं किया है, मैं तो हृदय चैतन्य प्रभु के सेवक के भी समान नहीं हूँ, फिर उन्होंने ऐसा कैसे लिखा। हृदय चैतन्य मुझ पर क्रुद्ध हैं ये जानकर कि मैं मर्माहत हो गया हूँ। कृष्णदास ब्रज में आकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए मेरे पास आए थे, हृदय चैतन्य प्रभु का शिष्य जानकर ही मैं इनका सम्मान करता हूँ, कृष्णदास को अपने पास रखा है और उससे अधिक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कृष्णदास को नूतन तिलक और नया नाम दिया ऐसा कौन कहता है, आप स्वयं ही कृष्णदास को बुलाइए और निर्णय करिए सत्य क्या है, कृष्णदास से पूछो। जीव गोस्वामी बोले, जीव गोस्वामी के वचनों को सुनकर के 10 वैष्णव आए थे गौरमंडल से, उन्होंने कहा कि सीधा वृंदावन से 2 वैरागियों ने जाकर हृदय चैतन्य प्रभु को बताया कि कृष्णदास ने गुरु का त्याग किया है और आपको गुरु बनाया है, आपने कृष्णदास को नया तिलक प्रदान किया है और नया नाम श्यामानंद दिया है, हृदय चैतन्य ने हम लोगों को आपके पास ये पत्र देकर के भेजा है। जीव गोस्वामी आश्चर्यचकित होकर के बोले हे वैष्णवो, ब्रजवासी वैष्णव लोगों से पूछने पर आप लोग सत्य झूठ को जान सकेंगे, उनसे पूछने के पश्चात अगर आपको लगता है कि मैंने गुरु का त्याग कराया है तो मैं अपराधी माना जाऊंगा। जीव गोस्वामी के वचनों को सुनकर के गौर देश से आए वैष्णव आप समझ नहीं पा रहे अब क्या किया जाए, तो बोले हम लोग इस विषय में किसी से प्रश्न नहीं करना चाहते, आप जो कुछ कहेंगे वही उसी पर हम विश्वास करेंगे। उन वैष्णवों ने कहा, इस पर जीव गोस्वामी ने कहा हे वैष्णवो, मेरे कृष्णदास से इस विषय में प्रश्न करने पर उसने मुझे बताया। अब जीव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि मैंने जब कृष्णदास से पूछा ये नया नाम और नए तिलक के बारे में, तो कृष्णदास ने मुझे बताया, क्या बताया कि हृदय चैतन्य प्रभु के चरण चिन्ह ही इस लाट पर तिलक रूप से प्रकाशित हुए हैं मेरे। जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि कृष्णदास ने मुझे ही बताया कि जो नया तिलक का चिन्ह है ये मेरे गुरु के हृदय चैतन्य के चरण का चिन्ह है, और मेरे प्रश्न करने पर उसने मुझे जो बताया वो सुन लीजिए कि वो कुंज की सेवा करते थे, 1,00,000 नाम जप करते थे, भागवत श्रवण करते थे, तो रात्रि में स्वप्न देखा और सोहनी से झाड़ू लगा रहे हैं, हृदय चैतन्य प्रभु आए स्वप्न में। अब जीव गोस्वामी को भी स्टोरी बनानी पड़ी, तो कृष्णदास ने मुझे जैसा बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हृदय चैतन्य, कृष्णदास ने मुझे बताया कि मेरे गुरु हृदय चैतन्य मेरे सपने में आए और मैंने उनको आसन प्रदान किया चटाई। हृदय चैतन्य प्रभु बैठ करके सपने में ही कुशल पूछा, मेरा कुशल पूछा और मैंने साष्टांग प्रणाम करके बोला कि आपकी आज्ञा को सिरोधार करके आपके चरण का ध्यान करते हुए ब्रज में वास करते हुए मैं कुंज सेवा कर रहा हूँ। हृदय चैतन्य प्रभु बहुत प्रसन्न होकर बोले, कृष्णदास तुम धन्य हो, तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है, यहाँ राधा श्याम सुंदर का विहार होता है, तुमको कुंज की सेवा प्राप्त हुई है, ब्रह्मादि देवताओं के लिए दुर्लभ है। जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि मुझे बताया कृष्णदास ने कि मेरे गुरु हृदय चैतन्य ने सपने में ऐसा कहा है, तुम सेवा को करते रहो, श्यामा श्याम निश्चित रूप से तुम्हें दर्शन प्रदान करेंगे, आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। इस प्रकार कहकर हृदय चैतन्य प्रभु ने कृपा करके मेरे मस्तक पर चरण कमल रखा और परिक्रमा के लिए कुंज के अंदर चले गए। हृदय चैतन्य प्रभु का चरण चिन्ह ही मेरे ललाट पर तिलक के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो कृष्णदास ने मुझे तो यही बताया। तो हृदय चैतन्य प्रभु की आज्ञा को ही मान करके कृष्णदास को मैं अब श्यामानंद के नाम से संबोधित करता हूँ। मैं तो जो है श्यामानंद इसलिए बोलता हूँ, वृंदावन के साधारण व्यक्ति इस तत्व को ना जानकर ऐसा कहने लगे कि मैंने अपना शिष्य बना लिया है और ये श्यामानंद तिलक प्रदान किया है, तो आप कृष्णदास से प्रश्न कर लो। कृष्णदास ने मुझे जो बताया, अब अगर और पूछना है तो कृष्णदास से भी पूछ लो कि वो क्या कहते हैं। जीव गोस्वामी की मुझसे ये बात सुन करके श्यामानंद प्रभु ने जो है स्थिर कर लिया कि अब मुझे भी वही बोलना होगा, तो उन्होंने फिर वही बात बोली। क्या वही बोला कृष्णदास ने? वही बात बोली। तो दोनों के मुख से वही बात, वही घटना सब सुन करके वैष्णव बड़े प्रफुल्लित होकर के श्यामानंद का लिंगन कर किया और हृदय चैतन्य प्रभु के नाम से पत्र लिख करके जीव गोस्वामी ने उन वैष्णवों को दे दिया। वैष्णवों ने पत्र प्राप्त करके जीव गोस्वामी को प्रणाम किया और अंबिका में पहुंचे। बहुत दूर है वृंदावन, कहाँ बंगाल, बहुत दूर है, वो पैदल चलते हैं। अंबिका में पहुंच करके वैष्णवों ने हृदय चैतन्य को पत्र दिया। आदि से अंत तक पढ़ने पर हृदय चैतन्य का संशय और बढ़ गया, हृदय चैतन्य का संशय और बढ़ गया। जैसा पत्र में लिखा है, मैंने स्वप्न में दर्शन दिया और कृष्णदास का नाम बदल करके श्यामानंद कर दिया और मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, और कृष्णदास का वो हरि मंदिर आकृति वाला तिलक परिवर्तित होकर मेरे चरण की आकृति वाला तिलक हो गया और किंतु मुझे कुछ पता नहीं। कृष्णदास ने स्वप्न देखकर स्वप्न की घटना को सत्य माना, जब मेरे साक्षी आदेश को मिथ्या माना। क्या ठीक है? सपने में मेरी बात को तो सत्य माना और मुझसे इस बात की जांच नहीं की, क्या ठीक है? कृष्णदास ने सपने में मैंने कुछ कहा तो उसको सत्य माना और मेरी बात को सत्य नहीं माना, ऐसा लग रहा है जीव गोस्वामी ने मेरे शिष्य कृष्णदास द्वारा मेरा त्याग करवाया है और मुझे धोखा देकर के पत्र लिखा है जीव गोस्वामी ने। अब वैष्णवों को साथ लेकर के गौर मंडल के वैष्णवों को साथ लेकर के वृंदावन अब मैं खुद जाऊंगा, साधुओं के समाज में अब ये बात रखूंगा और सत्य झूठ का निर्णय होगा। और कठिनाई पैदा होगी। हृदय चैतन्य प्रभु उद्विग्न चित्त से आए और घटना का वर्णन किया वृंदावन में आकर के कृष्णदास को। जीव गोस्वामी ने अपने शिष्य रूप में ग्रहण किया है, इस पर विचार करो। गौर मंडल के सभी महंतों से प्रार्थना की और गौर मंडल के महंतों ने कृष्णदास के कांड पर विचार करने के लिए ब्रज मंडल को गमन नहीं किया। तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, उन्होंने कहा कि आप लोग अगर ब्रज मंडल नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। किसने कहा? हृदय चैतन्य ने कहा। हृदय चैतन्य का जो है विचार जो है अब ईर्ष्या जनित नहीं था, ईर्ष्या के कारण नहीं था। कृष्णदास जैसे निष्ठावान शिष्य अगर गुरु त्यागी बन जाए तो वैष्णव धर्म की मर्यादा लुप्त हो जाएगी, ये सोच करके उद्विग्न हुए हृदय चैतन्य प्रभु। उनका अपमान नहीं था कि भाई मेरा त्याग क्यों किया, मैं गुरु हूँ, ये नहीं था। मर्यादा का त्याग किया तो वैष्णव परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। तो अब वृंदावन चले, यमुना में स्नान किया, प्रसाद ग्रहण किया, सब लोग वह चल करके जीव गोस्वामी के पास समाचार आया। तुरंत जीव गोस्वामी ने समाचार सुना और धीर समीर में पहुंचे और गौड़ मंडल के भक्तों को दंडवत प्रणाम किया और फिर हृदय चैतन्य प्रभु के आगमन का समाचार भी प्राप्त हुआ। श्यामानंद ने भी तत्काल धीर समीर में पहुंच करके गुरुदेव और सब महंतों वैष्णवों को दंडवत प्रणाम किया। श्यामानंद को देखते ही हृदय चैतन्य क्रोधित होकर बोले, कृष्णदास तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? मेरे साथ अपने संबंध, मेरे द्वारा दिया तिलक और नाम का तुमने परित्याग किया, इसलिए मेरे साथ और मेरे संबंध से इन वैष्णवों के साथ ही तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकता है। तब श्यामानंद हाथ जोड़ के बोले, बोले कि आपकी कृपा से मुझे श्यामानंद नाम मिला है और श्यामानंद तिलक में आपकी कृपा से ही ललन पर धारण करता हूँ। तुम स्वप्न की कथा को सत्य मानकर उसके अनुरूप कार्य कर रहे हो, किंतु मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मुझे धोखा देकर के तुमने जीव गोस्वामी के द्वारा मुझे पत्र लिखवाया। कौन बोले? हृदय चैतन्य बोले। श्यामानंद प्रभु ने उत्तर दिया कि प्रभु ये कोई धोखेबाजी नहीं है, जीव गोस्वामी ने आपको पत्र में जो कुछ लिखा है वही सत्य है। इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए हृदय चैतन्य प्रभु और भी क्रोध होकर बोले, अच्छा तुम्हारे ललाट के तिलक और शरीर पर श्यामानंद नाम लिखकर उनको धोएंगे हम। अब क्या करेंगे हम? तुम्हारे ललाट पर वो श्यामानंद तिलक मैं बनाऊंगा और ललाट पर श्यामानंद नाम लिखूंगा और फिर मैं धोऊंगा। अगर पानी से भी तिलक और नाम दोबारा प्रकाशित हो जाए तो मैं मानूंगा कि स्वप्न की कथा सत्य है और अन्यथा वैष्णव समाज से तुमको निकाल दिया जाएगा। अब विशाल वैष्णव सभा का आयोजन हुआ, इतना मतलब वैष्णवों की सभा में सबके सामने हृदय चैतन्य 64 महंतों द्वादश गोपालों को साथ लेकर के ब्रज में पधारे हैं। सब लोग जो है इकट्ठे हुए। अब कार्यवाही प्रारंभ हुई। श्यामानंद सभा में आकर के सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब सब महंत श्यामानंद से बोले, हे कृष्णदास तुम सच बतलाओ तुम किसके सेवक हो, इस तिलक और नाम को किसने प्रदान किया है? सब वैष्णव पूछ रहे हैं। कृष्णदास ने हाँ जोड़कर विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे वैष्णवगण मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, हृदय चैतन्य ही मेरे गुरु हैं, उनका चरण चिन्ह तिलक ही मेरे ललाट पर धारण किया हुआ। सब महंतों ने श्यामानंद से मधुर वाणी में कहा, कृष्णदास स्वप्न की कथा कभी सत्य नहीं होती है, भगवान के रूप सुनने पर गुरुदेव से रक्षा हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव के रूप सुनने पर तीनों लोगों में कोई रक्षा नहीं करेगा। अभी भी समय है, तुम सत्य बोलो, हम सब मिलकर अपराध से तुम्हारा उद्धार कराने की चेष्टा करेंगे। अभी समय है, क्या करो? सच बोल दो। यदि विशाल वैष्णव सभा में तुम मिथ्या भाषण करोगे तो तुम नरक जाओगे। यदि तुमने गुप्त रूप से किसी से दीक्षा ग्रहण की है तो निर्भय होकर वैष्णव समाज के सामने प्रकाशित कर दो, हम सभी मिलकर तुम्हारे उस अपराध का मोचन करवाने का प्रयास करेंगे। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं होती, तुम्हारे तिलक और नाम की परीक्षा लेने पर तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। अब परीक्षा होगी, क्या परीक्षा होगी? नाम लिखा जाएगा तिलक और फिर धोया जाएगा, फिर क्या निकलेगा? फिर आएगा क्या दोबारा? तो तुम धोखेबाज से धोओगे। तो श्यामानंद बोले कि स्वप्न की कथा भी निश्चित रूप से सत्य है, क्योंकि श्री कृष्ण शाश्वत सत्य हैं। फिर भी आप लोग बारंबार कह रहे हैं तो मुझे दो दंड का समय दीजिए। दो दंड का मतलब, एक दंड होता है 24 मिनट का, दो दंड का मतलब 48 मिनट का समय दीजिए, उसके पश्चात आप लोगों के प्रश्न का उत्तर दूंगा। श्यामानंद ध्यान में मग्न हो गए। कितने समय का, कितना समय मांगा? 48 मिनट। ध्यान में मग्न हो गए और अब वो राधा मंत्र का जप करने लगी। संकट आया, अब ललिता ने कहा ही था, राधा मंत्र का जप करना शुरू किया उन्होंने, तो कनक मंजरी का रूप उनका जो है प्रकट हुआ। राधा रानी के कुंज के बाहरी द्वार पर बैठ करके क्रंदन करने लगे, कनक मंजरी के रूप में रो रहे हैं। वहां पर पहुंच गए, सब सबके सामने तो उनका शरीर बैठा हुआ ध्यान में मग्न है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो दूसरे शरीर से, वो कनक मंजरी के शरीर से राधा रानी के कुंज के बाहरी द्वार पर क्रंदन कर रही है कनक मंजरी। राधा रानी के सखियों के पूछने पर बताया, हे देवियों, मेरा नाम कनक मंजरी है, मैं ब्रज मंडल में वास करती हूँ। ललिता सखी के चरण की दासी होकर उनके साथ रहने के कारण घर लौटते ही मेरे पति क्रोध होकर मुझ पर प्रहार करने लगे और अपने प्राणों की रक्षा करके भाग करके यहाँ आई हूँ। आप लोग कृपा करके ललिता के चरणों में मेरी आगमन की सूचना पहुंचाइए, मुझे उनसे दर्शन करा, मुझे दर्शन देकर मेरे प्राणों की रक्षा कराइए। सखियों ने जाकर ललिता जी को सब कुछ बताया। अब देखो ये घटना वहां हो रही है। अब ललिता जी राधा रानी की तांबूल सेवा में लगी हैं। उन्होंने एक सखी को भेजकर कनक मंजरी को कुंज के भीतर बुला लिया कि मैं तो बाहर नहीं जा सकती हूँ, उसी को बुला लो। तो राधा रानी कि जैसे पलंग पर विराजमान होकर तांबूल का सेवन कर रही हूँ, उस समय राधा रानी पलंग पर विराज, ललिता जी उनको तांबूल दे रही हैं। रूप मंजरी राधा रानी के चरणों की सेवा में लगी हैं। चंपक लतिका सखी धीरे धीरे चमन डोला रही हैं। उस समय राधा रानी के सौंदर्य का दर्शन करके कनक मंजरी उनके चरणों में व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगी। ललिता सखी ने कनक मंजरी को घूम पर उठा करके अपनी गोद में लिया। मोबाइल बंद कर रहा हूँ, आप लोग भी कर दीजिए मोबाइल बंद अपना। हाँ क्या सुना? गोद में लिया राधा रानी ने किसको? कनक मंजरी को गोद में लिया और रूप मंजरी ने भी कनक मंजरी को अपनी गोद में लिया। राधा रानी के चरणों में उनको प्रणत किया। राधा रानी ने स्नेह पूर्वक कनक मंजरी से पूछा, तुम इतनी अधीर होकर क्यों रो रही हो? कनक मंजरी ने रोते हुए राधा रानी के चरणों में कहा कि वृंदावन की राजस्थली के कुंजों का संस्कार करते समय आपके अहेतु की कृपा से मुझे ये नूपुर तिलक और श्यामानंद नाम मिला और अर्चा विग्रह प्राप्त हुआ श्याम सुंदर जी का। ललिता जी ने आदेश दिया था कि किसी अन्य से नहीं कहना, तो ललिता के आदेश के अनुसार जीव गोस्वामी के अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, किंतु मेरे दीक्षा गुरु हृदय चैतन्य आपके द्वारा प्रदत्त इस तिलक को देखकर मुझ पर अविश्वास करने लगे हैं, प्रश्न करने लगे मुझे तिलक और नाम किसने प्रदान किया। जीव गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार बतलाने पर तिलक और नाम वाले नाम मुझे हृदय चैतन्य प्रभु ने स्वप्न प्रदान किया। मैंने जब ये बताया तो वो बोले कि तुमने स्वप्न देखा जैसे मैं नहीं जानता, तुम्हारे स्वप्न को मैं सत्य नहीं मानता, तुम्हारे तिलक को मैं धोऊंगा, उस पर भी तिलक दोबारा प्रकाशित हो जाए, श्यामानंद नाम भी लिख करके धोऊंगा, दोबारा प्रकाशित हो जाए तब मैं मानूंगा कि स्वप्न में मेरी कृपा जो हुई है वो सत्य है, अन्यथा वैष्णव समाज से तुमको निकाल दिया जाएगा। ये कौन बोल रही है? कनक मंजरी बोल रही है, राधा रानी से बोल रही है। हे देवी, गौर मंडल के 64 महंत हैं, द्वादश गोपाल हैं, सब कल्पकुंज राजस्थली के प्रांगण में सभा का आयोजन हो रहा है। ये देखो 48 मिनट के समय में ही ये सब चल रहा है। उधर सभा के बीच में तो उनके अपने ध्यान में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है बातचीत हो रही है। तो मैंने कहा कि इस नाम तिलक को पुनः प्रकाशित होते मैं साधु समाज में दिखलाऊंगा और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं सब बोला प्राण त्याग दूंगा क्योंकि मैं पुरुष रूप में हूं ना। यहाँ कनक मंजरी के रूप में बोल रही है कि हे देवी, मैं उन लोगों से मात्र 2 दंड का समय लेकर आई हूँ, केवल 48 मिनट का समय मैंने लिया है उनसे, है जिस प्रकार आपके चरणों और गुरुदेव के चरणों की कृपा से वंचित ना हों और वैष्णवों के समाज में के संकट से मुक्त हो सकूं, ऐसा उपाय आप कीजिए। तो ललिता जी रूप मंजरी कनक मंजरी की रक्षा के लिए राधा रानी के चरणों में विनती करने लगी। राधा रानी ने कनक मंजरी को इस घोर संकट से उबारने के लिए अपने चचेरे भाई सुबल को बुलाया। राधा रानी के चचेरे भाई सुबल जब सामने आए, राधा रानी ने कहा, सुबल तुम्हारे शिष्य के शिष्य इस कृष्णदास को मैंने अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया है, नित्य गुंज सेवा का अधिकार दिया है। सुबल ही तो गौरीदास पंडित है ना, अब गौरीदास पंडित तो शरीर छोड़ करके सुबल सखा के रूप में वहां लीला में है, तो राधा रानी कह रही कि तुम्हारे शिष्य के शिष्य को मैंने अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया है, है। तो अब जिस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके तुम ऐसा उपाय करो। तो राधा रानी का आदेश पाकर सुबल ने प्रफुल्लित होकर के कनक बंजरी की ललाट पर अपने हाथ से वो नूपुर तिलक की रचना की, अपने हाथ से नूपुर तिलक की रचना की और श्यामानंद नाम भी लिख दिया अपने हाथ से। है मतलब कहने का है कि तुम्हारे गुरु का गुरु मैं हूँ, जो मैं ये दे रहा हूँ तिलक चिन्ह दे रहा हूँ और नाम दे रहा हूँ। है फिर उन्होंने कनक मंजरी से कहा कि वैष्णवों के समाज में कहना मेरे गुरु का रूप धारण करके गौरीदास पंडित ठाकुर ने मुझ पर कृपा की। अब क्या बोलना, थोड़ा सा बात को बदलना पड़ेगा, जो कुछ बोला है उसमें थोड़ा और संशोधन कर देना, करेक्शन। क्या बोलना है कि मेरे गुरु के गुरु आए थे मेरे गुरु के रूप में, मतलब गौरीदास पंडित आए थे मेरे गुरु के हृदय चैतन्य के रूप में आए थे, मुझ पर कृपा की और ये नाम दिया और मैंने दे ही दिया, वो तिलक चंद मैंने दे ही दिया है और मैंने नाम भी लिख दिया है। हैं सुबल ने आगे कहा कि तुम फिर उस वैष्णव के समाज में मेरा स्मरण करना तो तिलक और नाम और ज्यादा तेज से प्रकाशित हो जाएंगे। तो समय तुम मेरा स्मरण करना, किसका, सुबल सखा का स्मरण करना। सुबल की अभय वाणी सुनकर कनक मंजरी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी। सुबल ने कनक मंजरी को मस्तक पर अपने चरण स्थापित करके बहुत प्रकार से कृपा आशीर्वाद करके चले गए। अब कनक मंजरी ललिता जी विशाखा और रूप मंजरी के चरणों में प्रणत होकर दोबारा राधा रानी के सामने आई। करबद्ध होकर राधा रानी के मुख का दर्शन करते हुए गदगद होकर उन्होंने स्तुति की। राधिका जी ने तब कनक मंजरी से कहा कुछ दिन उत्कल में जीवों का उद्धार करके फिर आकर मेरी सेवा में आ जाओ। अभी कुछ दिन अभी उत्कल में जीवों का उद्धार करना है तुम्हें। राधा रानी सभी सखियों मंजरियों ने कनक मंजरी पर बहुत प्रकार से कृपा की। राधा रानी के आदेश से एक सखी कनक मंजरी को कुंज से बाहर जाने का रास्ता दिखाकर कुंज में लौट गई। अब यहाँ वृंदावन में वैष्णवों की विचार सभा में श्यामानंद का शरीर देख करके सोचा सबने कि इन्होंने शरीर त्याग दिया। क्या समझे, अब वो पता नहीं शरीर गिर पड़ा हो या बैठे बैठे ही शरीर त्यागता है, बैठे बैठे भी कोई शरीर त्यागता है तो शरीर बैठा हुआ हो। सभी महंत वैष्णव विचलित हो गए और अहो हम सभी ने ब्रज में आकर क्या अनर्थ कर दिया, एक ब्रजवासी वैष्णव के प्राण नष्ट हो गए और हम लोग देखते रहे। हृदय चैतन्य श्यामानंद की ब्रह में कातर होकर रोने लगे। हृदय चैतन्य ने मान लिया कि श्यामानंद शरीर छोड़ दिया तो हृदय चैतन्य भी ब्रह में रोने लगे। किंतु जीव गोस्वामी श्यामानंद के सब चेष्टाओं को जानते थे, जीव गोस्वामी को सब कुछ पता है, जीव गोस्वामी को इतनी दृष्टि है कि वो श्यामानंद अभी कहाँ गए हैं और वहाँ पर क्या बात चल रही, जीव गोस्वामी को सब कुछ पता है। जीव गोस्वामी बोले हैं, बोले कि आप लोग सब मिलकर के नाम संकीर्तन कीजिए, श्यामानंद के शरीर में प्राण का संचार हो जाएगा। जीव गोस्वामी के आदेश के अनुसार श्यामानंद की निश्चेष्ट देह को वस्त्र से ढक दिया गया और स्वयं को वैष्णव हत्या का अपराधी मानकर सभी वैष्णव व्याकुल होकर के कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे कि हम सब लोगों को अब तो वैष्णव हत्या का दोष लग गया है। और उसी समय में श्यामानंद के देह में प्राणों का संचार हो गया और जय श्री गुरुदेव कहकर भूमि से उठ पड़े। उनको जीवित देख करके वैष्णव आनंद आवेश में उच्च स्वर में हरिध्वनि करने लगे। हृदय चैतन्य प्रभु श्यामानंद को जीवित देख करके प्रेम में विह्वल होकर उनका चुंबन करने लगे। तब सभी वैष्णवों ने श्यामानंद से कहा हे कृष्णदास, तुमने केवल दो दंड का समय मांगा था जो पूरा हो चुका है, अब तुम अपने तिलक और नाम के परिवर्तन के विषय में प्रकाश डालो। अब बताओ नाम और तिलक तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। अब उन्होंने उत्तर दिया, अब थोड़ा और रिफाइंड आंसर, उत्तर को थोड़ा और संशोधित किया, परिशोधित परिवर्धित संशोधित करके कहा मेरे गुरुदेव का स्वरूप धारण करके श्री गौरीदास पंडित ने ही मुझे मुझ पर कृपा की। यदि मैं श्री गुरुदेव के चरणारविंद का ही सेवक हूं तो इस नाम और तिलक को पुनः प्रकाशित करके दिखला दूंगा। तब सभी वैष्णवों ने परीक्षा के लिए श्यामानंद के ललाट पर वो नूपुर तिलक अंकित कर दिया, वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम लिख दिया। हृदय चैतन्य ने जब सब महंतों का आदेश प्राप्त करके जल की झारी लाकर श्यामानंद जी लाड के तिलक को और वक्षस्थल पर लिखित श्यामानंद नाम को भली भांति धोया पानी से धोया है। फिर महंतों के बीच में जाकर के बैठ गए। उधर श्यामानंद जी अत्यंत कातर होकर गौरीदास पंडित का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगे, हे पंडित ठाकुर, साधुओं की सभा में पधार कर आप अपने अनुशिष्य की रक्षा कीजिए। अनुशिष्य मतलब शिष्य के शिष्य की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए श्यामानंद प्रभु गौरीदास पंडित को पुकारने लगे, तब उनके ललाट पर बिंदु युक्त तिलक और वक्षस्थल पर श्यामानंद नाम पुनः प्रकाशित हो गए और सब वैष्णव लोग देखते रह गए। सभी को विस्मित करते हुए सुबल सखा की कृपा और श्रीमती राधारानी के आदेश से श्यामानंद की ललाट का तिलक और वक्षस्थल का नाम और उज्ज्वल होकर दोबारा प्रकाशित हो गए, तो हृदय चैतन्य ठाकुर अत्यंत लज्जा के कारण अधोमुखी हो गए। उनका मुंह सिर नीचा हो गया। किनका? हृदय चैतन्य का सिर नीचा हो गया। सभी वैष्णव उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे, श्यामानंद का लिंगन करने लगे, कई कई उनको गोदी में लेकर उनका चुंबन करने लगे। कोई कोई कहने लगे, स्वप्न की बातें भी सत्य होती हैं। श्यामानंद की कृपा से आज भगवान के पूर्व लीला प्रत्यक्ष देखी है, ऐसा कहते सभी वैष्णव श्यामानंद को आशीर्वाद प्रदान करने लगे। श्यामानंद जी सभी महंतों हृदय चैतन्य प्रभु को दंडवत प्रणाम करके जीव गोस्वामी के पास गए। जीव गोस्वामी श्यामानंद को गोदी में लेकर उनका चुंबन करने लगे और कहने लगे, तुम भक्त नहीं हो, मेरे प्राण समान हो, मेरा जीवन तुम्हारे प्रेम से बन गया है। हे कनक मंजरी श्यामानंद, तुम्हारी सेवा से श्यामानंद जी को आनंद प्राप्त हुआ है, तुम धन्य हो। अब प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। शिल श्यामानंद प्रभु तिरुभारती महामहोत्सव की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।